पाकिस्तान में इस रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। पाकिस्तान के ऐवाने बाला यानी सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवार सादिक संजरानी 48 वोट लेकर चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल यूसुफ रजा गिलानी ने 42 वोट लिए। चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से सादिक संजरानी का मुकाबला हिस्ब इख्तलाफ के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी से था। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए मिर्जा मोहम्मद आफरीदी हुकूमत और मौलाना गफूर हैदरी अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। जुमे की सुबह सेनेट के इजलास शुरू होने पर 9 मुंतखब सेनेटर्स ने हलफ लिया, जिसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर सैयद मुजफ्फर अली शाह की सरबराही में सेनेट के नए चेयरमैन की वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान सेनेट के 100 में से 98 अरकान ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वोट नहीं डाला, जबकि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार ने अब तक हलफ नहीं उठाया है और वो बैरून मुल्क मौजूद हैं, जिसकी वजह से उनका वोट नहीं है। पाकिस्तान के आईन के मुताबिक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब खुफिया बैलेट के जरिए होता है, लेकिन ऐवान में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल सामने आई जब अपोजिशन के अरकान ने पोलिंग बूथ और हॉल में मुबैना खुफिया कैमरों की मौजूदगी का इंकशाफ किया। अपोजिशन के एहतजाज के बाद हुकूमत और अपोजिशन के 3-3 अराकीन पर मुश्तमिल तहकीकती कमेटी बनाई गई है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF की तरफ से पाकिस्तान के लिए 6 अरब डॉलर के प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं और पाकिस्तान ने IMF की तरफ से दिए गए बेशतर टारगेट्स को रवा माह मुकम्मल करने की तैयारी कर रखी है, जिसके बाद इम्कान है कि रवा माह 24 मार्च को पाकिस्तान को इस प्रोग्राम के तहत $500 मिलियन की किस्त मौसूल हो जाएगी। माहरीन का कहना है कि IMF के मुख्तलिफ शराइत पूरी करने पर पाकिस्तान आइंदा चंद माह में मजीद महंगाई का शिकार होगा, ताहम बैनुल अक़वामी सतह पर IMF प्रोग्राम मुतहर्रिक होने पर पाकिस्तान की माशी हालत में बेहतरी आ सकती है। आलमी बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में खवातीन को कारोबार करने की सहूलियात देने में गुज़श्ता साल की निस्बत बाज़ आसानियां पैदा हुई हैं, जिससे इस मैदान में पाकिस्तान के मजमूई स्कोर में गुज़श्ता साल की निस्बत इजाफा देखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने खवातीन को कारोबार करने के लिए कवानीन को आसान बनाया है, जबकि काम करने की जगहों पर भी बेहतर कवानीन मुतारिफ करवाए गए हैं। ताहम पाकिस्तान अब भी जनूबी एशिया के दीगर ममालिक जैसे भारत, नेपाल और श्रीलंका से इस मैदान में पीछे है। जनूब मगरबी पाकिस्तान में हुक्काम ने जुमे के रोज बताया है कि सूबे बलोचिस्तान में कोयले की कान में होने वाले एक धमाके में 6 कानकन हलाक हो गए हैं। खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने बताया है कि मीथेन गैस के जमा हो जाने के नतीजे में धमाका हुआ। चीनी खबर रसां इदारे शिन्हुआ के मुताबिक धमाके से कबल 2 कानकनों को कान से निकाल लिया गया। काबुल से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक अफगान सिक्योरिटी के अहदेदारों ने बताया है कि उसकी फौज का एक ब्रिगेडियर जख्मों की ताब न लाते हुए कंधार के अस्पताल में जुमे के रोज दम तोड़ गया। नाम जाहिर न करने की शर्त पर सिक्योरिटी जराई ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि ब्रिगेडियर मुजम्मिल शफी, जो आठल कोर के कमांडर थे, जुमेरात के रोज पंजवान जिले में उस वक्त जख्मी हो गए जब वो इस हफ्ते अगले मोर्चों का मुआयना कर रहे थे, लेकिन उनका इंतकाल जुम्मे की सुबह हुआ। जराए का कहना है कि वो और उनके साथी तालिबान के दूर पार मिसाइल से जख्मी हुए थे। तालिबान ने इस हमले पर तबसरा नहीं किया है। पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि पाकिस्तान में वाजह तौर पर कोरोना वायरस की एक नई लहर आ चुकी है। पंजाब के बड़े शहरों समेत पूरा पाकिस्तान कोरोना वायरस की नई लहर की जद में है। अगर हमने एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ा तो ये लहर पूरे पाकिस्तान में बुरी तरह फैल सकती है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मनसब सदारत संभालने के बाद कौम से अपने पहले प्राइम टाइम खिताब में हिंदिया दिया है कि इस साल यह कुंबई तक अमरीका में 18 और इससे ज्यादा उम्र के तमाम अफराद को COVID-19 वैक्सीन लगवाने का अहल बना दिया जाएगा। खबरें खत्म हुई।
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں اپنے میزبان قمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے۔ صاحب، ایک ایسے وقت میں جبکہ دنیا کے موجودہ مالیاتی نظام کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو کرنسی کی صدائے بازگشت واضح طور پر سنائی دے رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی کرنسی ہے جو بڑے بینکوں، مالیاتی اداروں، ملکوں کے سرکاری بینکوں اور مخصوص مالیاتی گروپوں کے کنٹرول سے آزاد ہوگی۔ یہ کس نے ایجاد کی، اس بارے میں مختلف نام لیے جاتے ہیں، لیکن ماہرین کا خیال یہ ہے کہ جو بھی اس کا موجود ہے اس نے باوجود اپنی شناخت واضح طور پر ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اس بارے میں خاصا ابہام پایا جاتا ہے۔ یہ کرنسی کیا ہے، اس کی فزیکل اپیئرنس جیسے سکے کتنے اقسام کے ہیں، یہ کس طرح کام کرتی ہے، اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں، اس کے بارے میں ماہرین کے انداز فکر میں اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ماہرین سے گفتگو کر کے انہی سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت تو موجود ہیں جناب تمجید اعجازی، جو آسٹریلیا میں ایک کمپیوٹر کمپنی کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں اور کمپیوٹر کے امور کے ماہر ہیں۔ تمجید اعجازی صاحب، یہ فرمائیے کہ آج کل کرپٹو کرنسی کے بارے میں بہت کچھ سننے میں آ رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتی ہے؟
دیکھیے، کرپٹو کرنسی ایک بالکل ہی انوویٹو کانسیپٹ ہے، یعنی جو کرنٹ کرنسی کا ماڈل ہے وہ سینٹرلائزڈ ہے بالکل، اور وہ بینکنگ سسٹم کے اوپر بیس کرتا ہے اور اس کے پیچھے ایسٹس ہوتے ہیں جو کرنسی کو بیک کر رہے ہوتے ہیں۔ کرپٹو کرنسی یہ ہے کہ یہ ورچوئل کرنسی ہے جس کے پیچھے ایسٹ کوئی ایسٹ موجود نہیں ہے، اور یہ کرپٹو مائننگ کے کانسیپٹ پہ بیس ہے کہ اس میں ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر ہوتا ہے، سینٹرل لیجر نہیں ہوتا، یعنی کسی ایک بینک، ایک گورنمنٹ، ایک سینٹرل سسٹم سے یہ چیز لنک نہیں ہوتی، بلکہ آئی ٹی کی دنیا میں ایک کانسیپٹ ہے بلاک چین کا، تو کرپٹو کرنسی بلاک چین پہ بیس کرتی ہے۔ اور وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ دوسرے بندے سے کوئی چیز خریدتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی گھر خریدتا ہے یا کوئی سائیکل خریدتا ہے، تو اس کو جو وہ پیمنٹ کرے گا وہ پیمنٹ کوئی سینٹرل بینک ریکارڈ نہیں کر رہا، بلکہ وہ ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر میں 10 یا 15 یا 20 یا 40 لوگ اس کو اپنے اپنے پاس ریکارڈ کرتے ہیں، اور وہ اس طرح سے اسٹور ہوتی ہے کہ کوئی ایک ادارہ اس پہ منافی نہیں رکھ سکتا کہ جی آپ ڈالر پہ ٹرانزیکٹ کر رہے ہیں یا کسی اور کرنسی میں ٹرانزیکٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف سے پیرلل سسٹم ہے بینکنگ سسٹم کا جو کہ اس وقت ایوالو ہو چکا ہے، اور دوسرا سوال جہاں تک ہے کہ یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس جغرافیکل لوکیشن سے اس میں ٹرانزیکشن کر رہے ہیں۔ کچھ ممالک میں یہ کرپٹو کرنسی فل لیگل ہے، کچھ ممالک میں یہ انلیگل ہے، اور اس سے ابھی بات چیت چل رہی ہے، بحث و مباحثہ چل رہا ہے، لیکن پچھلے 4 سالوں میں جس طرح سے یہ ایوالو ہوئی ہے اور گرو کی ہے، اس میں امکان اس بات پہ نظر آتا ہے کہ آگے چل کے 100% لیگل ہو جائے گی، اور اب آہستہ آہستہ اس کی جو اڈاپٹیبلٹی ہے یا جو ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔
یہ آپ نے کہا کہ ایک پیرلل سسٹم ہے جو ہمارا موجودہ بینکنگ سسٹم ہے اس کی، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مرحلے پر آئندہ برسوں میں یہ اس سسٹم کی جگہ لے لے گا؟
جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی نہ صرف یہ جگہ لے لے گا بلکہ یہ ہی مستقبل کا سسٹم ہے۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ ابھی یہ بالکل ہی 100% کہہ لیں کہ فری مارکیٹ میں ہے اور ریگولرائز نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ جو میرا اندازہ ہے یا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، آہستہ آہستہ یہ چیز گورنمنٹ ریگولیشن اور فریم ورک کے اندر آنا شروع ہو جائے گی، اور یہ ایک گورننگ اسٹرکچر اس کے اراؤنڈ بلڈ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کہہ لیں کہ کرنٹ بینکنگ اسٹرکچر ہے، یہ بالکل ہی एक तरह से खत्म हो जाएगा अभी नहीं तो 20 साल बाद, 25 साल बाद। और उसकी रीजन ये है कि जो करंट बैंकिंग सिस्टम है वो बिल्कुल ही पुराने कॉन्सेप्ट पे और लेगेसी कॉन्सेप्ट पे बेस करता है, जो बहुत अच्छे तक चलेंगे नहीं दुनिया के अंदर। क्योंकि अब डिजिटाइजेशन इतनी हुई है, नेटवर्क का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इंटरनेट का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो ये जो वर्चुअल करेंसी या 100% वर्चुअल करेंसी वाला कॉन्सेप्ट है वो ही आगे चल के सस्टेन करेगा। और उसमें क्योंकि जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं ब्लॉकचेन के और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के, वो ज्यादा सिक्योर हैं एज कम्पेयर टू सेंट्रल बैंक या जो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम मौजूद है। तो मेरी अपना अंदाजा या अपनी एक कह लेंगे स्पेकुलेशन ये है कि कुछ 10-20 सालों के अंदर ये पूरा का पूरा आपका करेंसी सिस्टम क्रिप्टो करेंसी से रिप्लेस हो जाएगा।
ये वर्क किस तरह से करता है, इसकी खरीद और फरोख्त किस तरह से होती है, ये मार्केट में कैसे आता है?
देखिए, क्रिप्टो करेंसी में और नॉर्मल करेंसी में फर्क ये है कि नॉर्मल करेंसी किसी न किसी एसेट से बैक होती है, जैसे गोल्ड है या रियल एस्टेट है या कोई और चीज है। क्रिप्टो करेंसी इस तरह से वर्क करता है कि आपके इस तरह क्लाउड में वर्चुअल सिस्टम होते हैं, उस तरह इसके पीछे वर्चुअल बैकिंग होती है जिसको हम माइनिंग कहते हैं। यानी कि मैं 5 लोगों को मैं अगर कहूँ कि जी आप मेरा ये लेजर मेंटेन करें, और वो लेजर मेंटेन करने के लिए जो काम करेंगे या जो टाइम स्पेंड करेंगे उसके नतीजे में क्रिप्टो करेंसी जनरेट होती है जो कि एक टोटली वर्चुअल करेंसी है। तो इसमें प्रोसेस इस तरह से बनाया है कि जी फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन का टारगेट ये है कि बाय 2045 दुनिया के अंदर 21 मिलियन जो है बिटकॉइन माइन किए हैं। और वो माइन इस तरह से होंगे कि जो जितने लोग इस पूरे सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं या इसके लेजर मेंटेन कर रहे हैं या ब्लॉक्स मेंटेन कर रहे हैं, वो उस पर मैनुअल काम करते हैं, और उस काम या टाइम स्पेंड करने के नतीजे में बिटकॉइन जनरेट होता है। तो ये थोड़ा सा एक कह लें कि कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर के टर्म में जो माइनिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको आप डायरेक्टली लोगों के आवर्स इनपुट से रिलेट कर सकते हैं कि जी जितने लोग इस क्रिप्टो करेंसी सिस्टम में अपना टाइम स्पेंड करके कॉइन्स को माइन कर रहे हैं उतनी ज्यादा ये करेंसी जनरेट हो रही है। और जनरेट होने के बाद चूंकि एक वर्चुअल सिस्टम है जो हजारों बल्कि लाखों लोग मेंटेन कर रहे हैं, तो उसमें उसका हिसाब किताब कहने के इंटैक्ट रहता है, और वो आपके पास कह लेंगे टोटल वॉल्यूम आ जाता है कि जी इतने मिलियन हमारे पास बिटकॉइन जनरेट हो चुके हैं, इसमें से इतने इसके पास हैं, इतने इसके पास हैं, और वो फिर आपस में ट्रांजैक्शन करके अगेंस्ट रियल एसेट्स उसको एज अ करेंसी यूज कर सकते।
अच्छा, इसकी वैल्यू किस तरह से डिटरमिन होती है, उसका तरीकाकार क्या है?
जी, वैल्यू का देखिए, इन्होंने एग्जैक्टली वही डिमांड एंड सप्लाई का रूल रखा हुआ है जो नॉर्मल करेंसी के लिए यूज होता है। यानी कि नॉर्मल करेंसी में ये होता है कि जितने नोट प्रिंट होंगे और उसके पीछे जितना गोल्ड बैक्ड होगा या डॉलर बैक्ड होगा उतनी उसकी वैल्यू डिटरमाइन होती है। बिटकॉइन के केस में या डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी के केस में कि टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइन जो माइन किए जाते हैं या टोटल नंबर ऑफ वर्चुअल करेंसी जो माइन की जाती है वो इस वक्त दुनिया में कितनी मौजूद है, आगे चल के कितने लोग उसको किस स्पीड से माइन कर रहे हैं और वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी और उसकी डिमांड कितनी है, उसके हिसाब से इसकी वैल्यू डिटरमाइन होती है। मिसाल के तौर पे 2 साल पहले तक जो है या 3 साल पहले तक इसकी वैल्यू बहुत कम थी, और एक बिटकॉइन जो है वो $2,000 तक भी पहुंच गया था। यानी अब इस वक्त अगर आप देखें तो वो तकरीबन $48,000 या इवन उससे भी ज्यादा पे मौजूद है। और उसमें ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन माइन होना कम हो गया है, बल्कि उसकी रीजन ये हुई है इस प्राइस इंक्रीज की कि उसकी डिमांड सडनली बढ़ गई है। और डिमांड क्यों बढ़ी है वो टोटल आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं कि जी टेस्ला ने अनाउंस कर दिया कि जी हम अपनी गाड़ियां बेचने के लिए अपना अपनी बाकी प्रोडक्ट बेचने के लिए बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेंगे। तो सडनली एक करेंसी जिसकी डिमांड मार्केट में नहीं थी उसकी डिमांड बढ़ गई कि जी हम बिटकॉइन से भी गाड़ी खरीद सकते हैं, डॉलर से भी खरीद सकते हैं, पाउंड से भी खरीद सकते हैं। और उसकी बेस पे इसका एक एक्सचेंज रेट डिफाइन हो गया है कि मिसाल के तौर पे हम अगर डॉलर को बेंचमार्क लेते हैं, जो कि मेरे ख्याल में आगे चल के ऐसा नहीं रहेगा कि डॉलर को बेंचमार्क लिया जाएगा, लेकिन इस वक्त हम डॉलर को बेंचमार्क लेते हैं तो कंपेयर करते हैं कि डॉलर के मुकाबले में उसकी कितनी डिमांड है, और उसकी बेस पे इस वक्त जो उसकी वैल्यू है वो $48,000 पर बिटकॉइन पॉइंट डिफाइन हुई है। आगे चल के मिसाल के तौर पे अगर माइक्रोसॉफ्ट कहता है या गूगल कहता है या बाकी लोग कहते हैं कि जी हम अपनी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए भी हम बिटकॉइन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू मजीद ऊपर जा सकती है अनलेस के बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो स्पीड अप हो जाए और ज्यादा तादाद में बिटकॉइन प्रोड्यूस होना शुरू हो।
जो मौजूदा मालियाती निजाम है या जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें रेजिस्टेंस है इस करेंसी के खिलाफ?
लेकिन रेजिस्टेंस बिल्कुल है और पिछले कुछ सालों में तो बहुत ज्यादा थी, अब वक्त के साथ साथ कम हो रही है और उस रेजिस्टेंस की जो मेन वजह है वो कंट्रोल या मोनोपोली है। यानी उसमें आपके पास अगर कोई ऐसा कॉम्पिटिटर आके खड़ा हो जाता है फाइनेंशियल सिस्टम में जिसको ना कोई बैंक कंट्रोल कर सकता है, जिसको ना कोई गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, जिसको यानी लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे मल्टीपल या लाखों की तादाद में लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसके खिलाफ रेजिस्टेंस होनी भी चाहिए क्योंकि जो करंट आपका फाइनेंशियल सिस्टम बेस करता है वो केले के सेंट्रल बैंक के कॉन्सेप्ट पे उसका तसव्वुर है और इवन जो दुनिया भर के सारे बैंक है या करेंसीज है वो भी जाके एक सेंट्रल बैंक में जाके लिंक होते हैं। तो आप कह लें कि इस क्रिप्टो करेंसी के आने से पूरा का पूरा आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो चैलेंज एक तरह से हो रहा है और हो गया है और जब तक कोई इसके अराउंड रेगुलेशन डेवलप करके इसको मैनेज नहीं किया जाएगा तो ये इनसिक्योरिटी बिल्कुल मौजूद रहेगी और ये बिल्कुल जेन्युइन इनसिक्योरिटी है।
अच्छा, बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो करेंसी की एक किस्म है, कॉइन है उसका, क्या और भी इस करेंसी के नाम है मुख्तलिफ?
जी, काफी इसमें क्रिप्टो करेंसीज है, बिटकॉइन है, इथियम के नाम से है, पाए के नाम से है, डिफरेंट करेंसीज है। बिटकॉइन इसलिए पॉपुलर है कि वो कह लें कि वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टार्टर्स में से थी और अब तक उसकी जो माइनिंग है वो काफी तादाद में हो चुकी है तो वो एक लार्जली एक्सेप्टेबल क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है। बाकी जो करेंसीज है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है मार्केट में और कॉम्पिटिशन भी क्रिएट हो रहा है और मुस्तकबिल में भी कह लें कि इस तरह की नई नई करेंसी आती रहेंगी, लेकिन बहरहाल उनकी जो वैल्यू है वो डिमांड है सप्लाई से ही कह लें कि डेवलप होगी या रिफाइन होगी।
तमजीद साहब, ये बताइए कि ये भी कहा जाता है कि इस करेंसी को गैर कानूनी मकासद कसूर के लिए, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या दहशतगर्दों को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कितनी हकीकत है?
ये 100% दुरुस्त बात है और यही एक मेजर वजह है जो हमारे करंट इकोनॉमिक सिस्टम है वो इस क्रिप्टो करेंसी को अपोज करता है। जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि ये क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज है और किसी सेंट्रल बैंक से गवर्नमेंट से लिंक नहीं करती तो इसमें आइडेंटिटी वाला कोई मैकेनिज्म शामिल नहीं है। यानी अगर मैं आपको बिटकॉइन के जरिए कोई अमाउंट भेजना चाहूँ तो आप ये पता नहीं लगा सकते कि मैंने भेज दिया या किसी और ने भेज दिया। इसी वजह से जितने आईटी की वर्ल्ड में जो रैंसम वेयर अटैक्स होते हैं, यानी वायरस आपने किसी कंप्यूटर में डाल दिया और उसको अनलॉक करने के लिए आप उससे पैसे डिमांड कर रहे हैं, तो वो इस वक्त सारे पैसे बिटकॉइन की फॉर्म में, क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में मांगे जाते हैं और जब जो विक्टिम होता है वो ये पैसे ट्रांसफर कर रहा होता है तो वो सामने वाले की आइडेंटिटी डिफाइन नहीं कर सकता कि मैं किसको ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा केले के लूपहोल है या इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मसला है जिसकी वजह से ये क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल हो रही है और आगे भी हो सकती है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जिसमें आपके ये डार्क वेब के अंदर जितनी ट्रांजेक्शन होती है इंक्लूडिंग जिसमें असला खरीदा जाता है और बेचा जाता है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर हो रहा है और इसके अलावा जो टेररिज्म की एक्टिविटीज है उसमें इसकी बहुत हद तक इन्वॉल्वमेंट है क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजेक्शन की। तो ये एक सीरियस जेन्युइन थ्रेट है जो जिसकी वजह से इसके खिलाफ करंट इकोनॉमिक सिस्टम में भी रेजिस्टेंस मौजूद है। और जो मैं गवर्नेंस मॉडल की बात कर रहा हूँ कि जब तक कोई गवर्नेंस मॉडल इस तरह से नहीं आएगा कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन शख्स किस शख्स को पैसे ट्रांसफर कर रहा है और किस वजह से ट्रांसफर कर रहा है, ये वाला मसला हल नहीं होगा और इसकी जिसे कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी उस तरह से नहीं मुमकिन होगी कि जिस तरह से नॉर्मल करेंसी की।
तो ये मॉडल क्रिएट करने के लिए इसके इन्वेंटर्स कोई कोशिश कर रहे हैं? इस सिलसिले में कोई कानून यूनिवर्सल किस्म के बन रहे हैं या कोशिशें हो रही हैं उसके लिए?
इसमें देखिए मजे की बात यह है कि बिटकॉइन जिसने इन्वेंट किया था उसका नाम अब तक किसी को नहीं पता और वो डिस्क्लोज पर्सनालिटी नहीं है, तो ये चूंकि डिसेंट्रलाइज मॉडल रखा गया था तो ये डिफरेंट लोगों से एटीट्यूड की जाती है, एसोसिएट की जाती है। जहां तक इसको रेगुलेट करने की बात है इसमें बिल्कुल कोशिशें हो रही है, और जो ये टेस्ला ने स्टेप लिया है कि क्रिप्टो करेंसी को एज अ करेंसी एक्सेप्ट किया जाए फिजिकल या कमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए, फिजिकल गुड्स के ट्रांजेक्शन के लिए, मेरे ख्याल में ये उस गवर्नेंस की तरफ एक पहला स्टेप है। जितनी ज्यादा रेगुलेटेड अथॉरिटीज और बड़ी कॉरपोरेशन इसमें इन्वॉल्व होंगी और इसको एज अ नॉर्मल करेंसी एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगी, वो साथ साथ इस तरह के गवर्नेंस रूल्स भी लेकर आएंगी, क्योंकि आप अगर हमें बिटकॉइन से पैसे दे रहे हैं तो उससे पहले वो हम आपकी आइडेंटिटी डिफाइन करेंगे कि आप कौन हैं, आपको कहाँ पे डिलीवरी चाहिए, आपकी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स क्या है, और ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होगा। तो इसमें दो अप्रोचेज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ने रखी हुई है। एक अप्रोच ये है कि आप जी बिटकॉइन या बाकी क्रिप्टो करेंसी को बिल्कुल बैन कर दें, और कुछ कंट्रीज ने ऐसा किया है, वहां पे ये वाला सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा, वो इसको बिल्कुल इलीगल समझते हैं। कुछ कंट्रीज में और बड़े कंट्रीज में ये अप्रोच मौजूद है कि जी ये चीज लीगल है, इसमें आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और हम इसको फैसिलिटेट करने के लिए 1, 2, 3 ये स्टेप्स कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। तो मेरा अंदाजा ये है जो रीडिंग है, क्योंकि अगले 3-4 साल में और बड़ी कंपनीज टेस्ला की जैसी इसको इसकी एक्सेप्टेबिलिटी कबूल करेंगी, इसको बढ़ाएंगी, और उसके साथ साथ ये वाला मैकेनिज्म इवॉल्व होगा कि जी इसकी गवर्नेंस किस तरह से होनी चाहिए और ये आइडेंटिफिकेशन कैसे होनी चाहिए कि जी ये लीगल पर्पस के लिए यूज हो रही है या इलीगल पर्पस के लिए यूज हो रही है, और इवेंचुअली जाके ये जो सारा फ्रेमवर्क है वो गवर्नमेंट के थ्रू पास करवाया जाएगा या कर दिया जाएगा, और किसी हद तक कहने की एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में आ जाएगी।
ये सिर्फ नंबर्स होते हैं, इसकी फिजिकल अपीयरेंस कोई नहीं होती?
जी, ये 100% वर्चुअल करेंसी है, इसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, इवन इसके पीछे कोई फिजिकल एसेट भी नहीं है। यानी अगर आप कल को आप फॉर एग्जाम्पल आप एक मफरूजा ले लेंगे जी, पूरा इंटरनेट का सिस्टम बैठ जाता है और आपकी सारी वर्चुअल दुनिया खत्म हो जाती है, तो इस करेंसी का कोई नामो निशान नहीं होगा और ये बिल्कुल इसकी एग्जिस्टेंस मिट जाएगी।
मौजूदा जो निजाम है मालियाती या बैंकिंग का, उसको और इसको अगर कंपेयर किया जाए तो मोर प्रिफरेबल आइंदा आने वाले हालात में कौन सा निजाम रहेगा?
दोनों सिस्टम को अगर कंपेयर किया जाए दूसरी टर्म में, तो जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का फर्क है आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम में क्योंकि सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व है और वो कैपिटलिज्म को ज्यादा स्कोप करता है, और अगर हम इसके पैरेलल ये क्रिप्टो करेंसी वाला सिस्टम ले लें तो ये सोशलिज्म के करीब है कि यानी जिसमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोगों के हाथ में इस बात की अथॉरिटी होगी कि वो ट्रांजेक्शंस को वेरीफाई कर सकें और मेंटेन कर सकें, बजाय इसके कि कुछ सेंट्रल अथॉरिटी होगी। तो गोइंग फॉरवर्ड इट रियली डिपेंड्स के जो भी दुनिया के बड़े इदारे हैं और मालियाती इदारे हैं और गवर्नमेंट्स हैं वो इसको किस तरह से मैनेज करते हैं। मेरे ख्याल में एक कोई हाइब्रिड सिस्टम डेवलप होगा कि जिसमें कुछ एलिमेंट्स आपके सेंट्रल बैंकिंग के मौजूद होंगे और कुछ एलिमेंट्स आपके डिसेंट्रलाइज मॉडल के होंगे, और इनसे मिलजुल कर कोई बीच का रास्ता निकलेगा, क्योंकि ये असल में ये दोनों बिल्कुल कंपीटिंग सिस्टम है और इन दोनों का एक मुकाबला है कि कौन किससे बढ़तरी लेकर जाता है, लेकिन दोनों की अपनी वैल्यू है और दोनों एग्जिस्ट करेंगे इन पैरेलल। मेरी रीडिंग है,
क्या ऐसा कोई इम्कान है कि दोनों पैरेलल सिस्टम चलते रहे?
जी जी बिल्कुल, दोनों पैरेलल मेरे अंदाजे मुताबिक दोनों एग्जिस्ट करेंगे पैरेलल और दोनों चलते रहेंगे, और इवेंचुअली आगे जाके ये डिसाइड होगा कि जी कौन से कंट्रीज हैं जो डिसेंट्रलाइज मॉडल को फुली फॉलो करना चाहते हैं और कौन से कंट्रीज हैं जो सेंट्रलाइज मॉडल को फॉलो करना चाहते हैं, और इसमें एक बहुत ज्यादा एक कंपीटिंग फिजा डेवलप होगी कि जो इदारे मालियात को पूरी दुनिया में कंट्रोल करना चाहते हैं उनके बीच में, और जो लोगों के हाथ में मालियाती निजाम को देना चाहते हैं उनके बीच में।
ये थे तमजीद एजाजी। जो बता रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है, ये किस तरह से काम करती है और इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं दुनिया के मालियाती निजाम के लिए।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट उर्दू voa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, उर्दू voa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं उर्दू voa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक उर्दू voa.com पर बराह राह सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए। दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
समीन, ये प्रोग्राम जुमरात के रोज रिकॉर्ड किया गया है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हारून बलोच, जो डिजिटल उमूर के एक्सपर्ट हैं और डिजिटल राइट्स ग्रुप फाइट्स फॉर ऑल से उनका ताल्लुक है और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। हारून बलोच साहब, आजकल क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये चीजें बहुत सुनने में आ रही हैं। जरा हमारे सुनने वालों के लिए आसान अल्फाज में बताएंगे ये क्या है।
जी जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज छेड़ा और ये ऐसा टॉपिक है जो के बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के ऊपर या फिर टीवी शोज के अंदर, लेकिन ये आज की रियलिटी है, बहुत बड़ी रियलिटी है। इन अ सेंस के जो कि हमारा करंट बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है दुनिया का, उसके अंदर बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर आपकी ट्रांजेक्शन्स इजीली आप नहीं कर पाते और या फिर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो बहुत महंगी पड़ जाती है आपको ट्रांजेक्शन, खसूसन ग्लोबल। अगर हमने ट्रांजेक्शन करनी है, अगर मैं पाकिस्तान से बैठ के अमेरिका में, अमेरिका से बैठ के पाकिस्तान में ट्रांजेक्शन करता हूँ, तो उस जो जो बैंकिंग चैनल हैं दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। क्रिप्टो करेंसी ने बहुत सारे इस तरह के जो प्रॉब्लम है जो कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर है, उसको ये उनका एक आंसर है, क्योंकि इसके अंदर आप ट्रांजेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, आपको बैंकिंग चैनल्स की या किसी अथॉरिटी की मदद नहीं लेनी पड़ती, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता, तो आप डायरेक्टली इसको जो जो दो पार्टीज जिन्होंने आपस में ट्रांजेक्ट करना है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और चैनल्स जो ट्रांजेक्शन का है वो बहुत सिक्योर है, और इसी वजह से जो है ना इसको बहुत ज्यादा आजकल जो टेक्नोलॉजी ने जितना इवॉल्व किया है, तो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे समरात में से एक समर ये भी है कि आज हमारे पास डिजिटल करेंसी है, जो कि कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो कि हमारा इंटरनेट अभी जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम है उसको रिप्लेस कर देगा। और इसी साल हम देखें दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इसको अब लीगलाइज कर दिया है, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी को उन्होंने अप्रूव कर दिया है, बड़े बड़े जितने भी पावर्स हैं दुनिया में उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है कि इसके अंदर वो ट्रेड कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं अभी भी जिन्होंने इसको अभी तक बिल्कुल लीगलाइज नहीं किया, और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन कंट्रीज के अंदर में से एक है, लेकिन एफर्ट्स हो रही है यहाँ पाकिस्तान में भी इस हवाले से कि क्रिप्टो करेंसी खसूसन बिटकॉइन को इसको इसके अंदर जो ट्रेडिंग है, इसकी माइनिंग है, इसको इसको इसके अंदर खरीदो फरोख उसको उसको लीगलाइज कर सके। उस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है उन्होंने आई थिंक 2 महीने पहले कोई रेजोल्यूशन पास किया है इस हवाले से कि पाकिस्तान में इसको लीगलाइज किया जाए, लेकिन चूंकि इतना आसान नहीं होता और एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स और फिर पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ सेंसिटिविटीज हैं, डेफिनेटली गवर्नमेंट के जहन में है ये चीजें, और फेटिफ का एक बहुत बड़ा, आपको पता है कि एक ऐसी एपिसोड चल रही है पाकिस्तान में जिसमें ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स जो कि हमारे ट्रेडिशनल वेज हैं उसके उसके जरिए जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लिंक्स पकड़े गए हैं जिससे टेररिज्म के साथ इसको बहुत ज्यादा जो फाइनेंसिंग हुई है हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने की या ऑर्गेनाइजेशंस ने की, तो वो एक फियर भी है। और अगर क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में हो जाती है इस तरीके से लीगलाइज इस टाइम पर, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के अप्रीहेंशन हैं कि क्रिप्टो करेंसी तो ऐसी करेंसी है जो कि जिसको ट्रेस आउट करना कि किस बंदे ने क्या किसको क्या किस लिए किस काम के लिए क्या पैसे कितने भेजे, तो वो और भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का किसी मतलब नहीं है कि इसके अंदर जो ट्रेड होगी या खरीदो फरोख्त होगी वो सिक्योर नहीं है। सिक्योर गवर्नमेंट्स ने उसके लिए अपने जो मैकेनिज्म्स हैं प्रोटोकॉल्स हैं वो डेवलप करने हैं, और गवर्नमेंट्स इस बारे में मेरे ख्याल में अभी कोई इस तरह की कोई पॉलिसी डिवाइज नहीं कर पाई है जिसे हम कहें कि जिसकी जिस जिसको गवर्नमेंट अडॉप्ट करके इसकी इसकी जो गलत इस्तेमाल है क्रिप्टो करेंसी का उसको रोक सके।
जो मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं लेन देन करते हैं तो बैंकों की और गवर्नमेंट्स की गारंटीज उसके पसे पुष्ट होती हैं। इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो ये जमानत दे सके कि आपका ट्रांजैक्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, उसको कैसे आप डील करेंगे?
देखिए इस हवाले से तो गवर्नमेंट्स ने मैकेनिज्म जो है वो डेवलप करने हैं। अब इसमें बहुत सारी केस स्टडीज ऐसी हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इस हवाले से जो ट्रेडिंग है वो उसको लीगल किया हुआ है। अब उसके पीछे जो उन्होंने जो मैकेनिज्म डिवाइस किया है वो स्टडी करने की जरूरत है, वो कौन से ऐसे सेपरेट चैनल्स हैं जिसके तहत वो उसको उन्होंने लीगलाइज करा। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल है, यूरोपीय यूनियन के अंदर बहुत सारे कंट्रीज है, बल्कि यूरोपीय यूनियन तो आपको पता है वो एज अ होल जो भी पॉलिसी लेके आता है वो इस तरह की वो वहां पर इम्प्लीमेंट होती है। तो उनकी जो केस स्टडीज है कि किस तरीके से उन्होंने ये मैकेनिज्म डेवलप किए हैं, कोई ऐसा कॉन्क्रीट मैकेनिज्म उनके पास भी नहीं है, लेकिन चूंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की के अंदर एवोल्यूशन हो रहा है और जिस तरीके से इंडिविजुअल्स ट्रांजैक्शन डेफिनेटली देखें जहां पर भी ट्रेड होती है वहां पर आप की कोशिश यही होती है कि आप जब ट्रांजैक्शन करें तो उसमें आपके जो आपको जो पैसे देने पड़ते हैं उस ट्रांजैक्शन के वो कम से कम हो, और इस सोल्यूशन के अंदर तो आपको पैसे देने ही नहीं पड़ते, आपको आप डायरेक्टली बगैर किसी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किए किसी अथॉरिटी को इन्वॉल्व किए ट्रांजैक्शन करते हैं ताकि वो जो जो पैसे उस अथॉरिटी को देने होते हैं वो एक तो वो बिल्कुल आप उससे बच जाते हैं, दूसरी बात ये है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सिक्योर रहती है, उसके ऊपर नजर नहीं रखी जा सकती, ठीक है, तो वो एक प्राइवेसी का भी एक उसके अंदर एस्पेक्ट है। मैकेनिज्म अब आइंदा दिनों में क्या इसके ऊपर को कंक्रीट सॉल्यूशंस डेवलप हो रहे हैं, गवर्नमेंट्स किस तरीके से प्रोटोकॉल्स बनाएगी कि को जैसे आपने कहा कि श्योरिटीज हो गवर्नमेंट की इसके पीछे, वो आई थिंक कि इस हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट होगी, और पाकिस्तान में तो ये डिबेट अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई, लेकिन कुछ कंट्रीज की केस स्टडीज इस हवाले से जिस तरीके से इन्होंने इसको लीगलाइज किया है डेफिनेटली उनके जहन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो जिसके तहत वो इसको इसके थ्रू होने वाली जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको उसको सिक्योर करेंगी, ताकि इसका नेगेटिव डेफिनेटली मैंने पहले भी बताया कि इसके नेगेटिव यूजेस हैं, चूंकि जितनी भी ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये सारी की सारी इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी है जिसे हम आम फहम जबान में डीप वेब कहते हैं, और डीप वेब के अंदर फिर एक और भी एक वेब है जो कि जो जिसे हम डार्क वेब कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी इलिसिट ट्रेड होती हैं, इलीगल ट्रेड होती हैं, जैसे ड्रग्स की ट्रेड हो गई, इलीगल आर्म्स की ट्रेड हो सकती है, या फिर इलीगल पोर्नोग्राफी, इस तरह की जो ट्रेड्स हैं वो वहां पर डार्क वेब में बहुत ज्यादा है, और डार्क वेब में जो जितनी इस किस्म की ट्रेड होती है वो सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी के जरिए होती है, तो ये इसके नेगेटिव है, इनको रोकना जो है वो गवर्नमेंट का चैलेंज है कि इन 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 ट्रेड्स को कैसे रोका जाए। यूएसए के अंदर बाकी कंट्रीज के अंदर अगर उन्होंने लीगल कर दी हुई है इसको इस करेंसी को, लेकिन अभी तक ये कंट्रीज इस किस्म की जो ट्रेड है जो कि डार्क वेब में हो रही है उसको नहीं रोक पाए, अभी भी ओपनली चीजें जो है वो डार्क वेब के अंदर सेल की जाती हैं, इस किस्म की इलिसिट चीजें ट्रेड हो रही है, और ना यूएसए पकड़ सकता है इसको रोक सका है, और ना और जो दुनिया के बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज इसको रोक सके।
ये है, डार्क वेब है क्या, जरा सा थोड़ा सा वजाहत करेंगे आप?
जी जरूर। देखिये जाफरी साहब, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि जो जो वेब है सारी वेब जितनी भी है वो एक गहरा समंदर है, ठीक है, और उसके तीन हिस्से मैं उसके कर दूं। एक हिस्सा सतही समंदर ऊपर की तह, जहां आप इजीली फ्लोट कर सकते हैं, वहां पर आसानी से आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। एक उससे नीचे समंदर होगा, जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा सा डीप सी है, ठीक है, जिसके अंदर हर कोई इजीली एक्टिविटी नहीं कर सकता, उसको आसान तरीकों से आप वहां पर अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकते, कुछ स्पेशल मींस और आपको स्किल्स चाहिए होती है वहां पर एक्टिविटी करने के लिए। फिर उससे भी नीचे बिल्कुल सबसे एंड पर समंदर के एक और तह है, लेयर है, जिसे हम डार्क वेब कहते हैं, ठीक है। और डार्क वेब वो जगह होती है जहां पर एक्टिविटी करना बिल्कुल आम बंदे के लिए, आम स्किल सेट के साथ करना बहुत नामुमकिन सी बात है। अब ये जो जो मैंने तीन आपको सतह बताई है, इसमें से अगर जितना एक्सेस हम करते हैं ना आम दुनिया, या मैं और आप ब्राउजर को इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट्स को सर्च इंजन्स की मदद से मुख्तलिफ सर्च इंजन्स के अंदर अपनी क्वेरीज डालकर, कीवर्ड्स डालकर वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, ढूंढ लेते हैं, आपको हैरत होगी ये सिर्फ 4% है, ओनली 4% ऑफ द इंटायर वेब जो मैंने आपको बताई है। बाकी जो 96% ऑफ वेब है वो डीप वेब और डार्क वेब है। अब डीप वेब जो है उसके अंदर खास किस्म की एक्टिविटीज होती है, जिसमें आप गवर्नमेंट के अथॉरिटीज की जो मालूमात डेटा उनसे रिलेवेंट वो डीप वेब के अंदर है, ठीक है। इसी तरीके से और बैंकिंग सेक्टर या फिर आपके जो इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट्स और इस किस्म का डेटा वो आपका डीप वेब है, जो कि दरमियानी सतह है हमारे वेब की। ये बहुत बड़ा इसका हुजम है, आप इसको कह सकते हैं तकरीबन 90% जो हमारा इंटरनेट है वो डीप वेब के अंदर है। अब जो डार्क वेब है वो बाकी जो बिल्कुल जो एंड पे है इस समंदर के सबसे गहराई का हिस्सा जो है वो 6% है। अब बाकी जितनी भी इलिसिट ट्रेड की मैंने आपको आपके सामने जिक्र किया वो सारा का सारा उस वेब के अंदर होता है, और डीप वेब को एक्सेस हम डार्क वेब को हम नॉर्मल ब्राउजर्स के जरिए एक्सेस नहीं कर सकते। वहां पर मौजूद जो वेबसाइट्स हैं, वहां पर मौजूद हों जो लोगों के कारोबार हैं, उनको एक्सेस करने के लिए खास टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, और उस टेक्नोलॉजी को आम फैन जबान में टॉर ब्राउजर कहा जाता है। तो टॉर ब्राउजर के जरिए आप डार्क वेब को एक्सेस करते हैं, और फिर डार्क वेब के जरिए अगर आपने मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस को एक्सेस करना है तो वहां पर मुख्तलिफ किस्म के एक्सचेंजेस बनी हुई है, आप उन एक्सचेंजेस का हिस्सा बनते हैं टॉर ब्राउजर के जरिए, और उन एक्सचेंजेस में जाकर फिर आप मुख्तलिफ किस्म की चीजों को एक्सेस करते हैं। लेकिन अगर वहां पर आपने मुख्तलिफ चीजों को एक्सेस करना है, परचेज करना है, उसकी खरीदो फरोख्त करनी है, ट्रेड करनी है, तो फिर उसके लिए फिर आपके पास क्रिप्टो करेंसी होना जरूरी है, तो उसके लिए फिर आपके पास बिटकॉइन होना जरूरी है, आपके पास इथेरियम होना बहुत जरूरी है, इन एक्सचेंजेस का भी आपको हिस्सा होना पड़ता है, ठीक है, ताकि आपके पास डिजिटल करेंसी होगी, आप डार्क वेब को एक्सेस करेंगे, डार्क वेब से चीजें परचेज करेंगे, डिजिटल करेंसी में पेमेंट होगी, क्योंकि ट्रेडिशनल करेंसी तो दे नहीं सकते, ट्रेडिशनल करेंसी से आप वहां पर परचेज करेंगे तो फॉर्म पकड़ा जाता है, क्योंकि उस ट्रांजेक्शन को ट्रैक आउट करना बैंकिंग के जो सिस्टम है उसके जरिए आपको पता है वो इजी है, लेकिन जो डिजिटल करेंसी है उसके पीछे जो आपकी जो हर कॉइन है, जैसे बिटकॉइन है, उसके हर कॉइन के अंदर जो उसकी अपनी आइडेंटिटी है वो हर कोई ओपनली एक्सेस नहीं कर सकता, उसके ऊपर एक स्पेशल की लगी होती है जो कि इनक्रिप्टेड होती है। अब वो उसकी चाबी सिर्फ उसी बंदे के पास है जिसके लेजर के अंदर वो कॉइन पड़ा हुआ है, ठीक है, तो जब वो कॉइन अगर वो स्पेंड करता है डार्क वेब के अंदर जाकर, तो वो उस कॉइन के साथ उसकी एक सीक्रेट की भी उस बंदे को जिससे वो चीज खरीद रहा है उसको भेजता है, ताकि वो उस कॉइन को कैश करा सके। तो ये एक इस तरह की टेक्नोलॉजी है, इस तरह के लेजर्स, डिजिटल लेजर्स मौजूद हैं, और इनको आसानी से एक्सेस भी नहीं किया जा सकता, और इनके लिए खास स्किल सेट की जरूरत होती है, लेकिन ये एक हकीकत है। चैलेंज यही है गवर्नमेंट्स के लिए, अथॉरिटीज के लिए, कि वो जो 6% जो डार्क वेब है उसके अंदर होने वाली एक्टिविटीज है उसको कैसे रोका जाए, बाकी जो 94% जो आपका इंटरनेट है, जैसे डीप वेब 90% उसका हिस्सा है, तो आप उसको उसके अंदर एक्टिविटीज वो काफी महफूज है, और गवर्नमेंट्स का जितना भी सेंसिटिव डाटा होता है वो सारा का सारा बैंक्स का सेंसिटिव डाटा انفراسٹرکچر جو سینسٹیو انفراسٹرکچر سے ریلیونٹ ویب سائٹس ہیں, ان کے کنٹرول کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہیں, وہ سارے سارے ڈیپ ویب کے اندر ہوتے ہیں اینڈ دے آر آلسو انکرپٹڈ.
گویا جو کرپٹو کرنسی ہے وہ غیر قانونی کام کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا ٹول ہے ان کے ہاتھ میں.
بالکل, لیکن یہ صرف انہیں کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ کہنا کہ یہ صرف انہیں کے ہاتھ میں ہے, یہ ضرور ان کے ہاتھ میں بھی ہے, لیکن یہ بہت زیادہ جو کرپٹو کرنسی ہے وہ زیادہ جو ہولڈ کرتے ہیں وہ ہمارے جو کہ ٹیکنالوجسٹ ہیں, جو کہ اپنے سافٹ ویئر یا اپنی سیف ٹرانزیکشنز یا اور اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں یوز کرتے ہیں. تو کرپٹو کرنسی ایک ٹول ضرور ان کے ہاتھ میں ہے, لیکن یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں ڈالرز نہیں ہے یا روپیہ نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں تو ہے آج کے, اور یہ ٹریڈیشنل مینز جتنے بھی فائنینشیل مینز ہیں وہ ان کو ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں.
اچھا,
تو یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اس میں ہم کوئی کسی قسم کی امتیاز کر سکتے ہیں کہ یار یہ صرف انہیں کے استعمال میں کرپٹو کرنسی آتی ہے. نہیں, زیادہ ہمارے ٹیکنالوجسٹ اپنے سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ اور ٹرانزیکشن اور اس قسم کی پیمنٹس اس کے لیے یوز کرتے ہیں.
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کرپٹو کرنسی کے لیے یونیورسل لاس کی ضرورت ہے؟
دیکھیں بالکل ضرور, اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہے تو ایک ٹائم آئے گا جب سب کو ایگری کرنا پڑے گا. آج اگر پاکستان نہیں مانتا کہ کرپٹو کرنسی کو ہم نے لیگل کرنا ہے تو ایک ٹائم لازمی آئے گا جب پاکستان کو کرنا پڑ جائے گا, کیونکہ آپ کو گلوبل ٹرینڈز کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. آئسولیشن میں پاکستان تو نہیں رہ سکتا. اگر کل کو ایسی سچویشن, ایسا انوائرمنٹ بن جاتا ہے جہاں پر موسٹلی ٹریڈ جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے اسٹیٹس کرنا شروع کر دیں گی, تو پاکستان کیا صرف پھر بھی اپنے روپے کے ساتھ ٹریڈ کرے گا؟ نہیں کر پائے گا نا. تو ڈیفینیٹلی اس کو شفٹ کرنا ہے. تو جب سارے ہر کوئی شفٹ کرے گا وہاں پر, تو یونیورسل جو ریگولیشنز ہیں ان کی ضرورت پڑے گی, ڈیفینیٹلی پڑے گی. اور اس حوالے سے بہت جلد ڈیبیٹ جو ہے وہ گلوبل جو فورمز ہیں ان کے اوپر, جیسے ورلڈ اکنامک فورم ہے اس کے اوپر, یا پھر اور یو این کی جو باڈیز ہیں ان کے اوپر ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. تو یہ ڈیفینیٹلی اس طرف ساری دنیا کو جانا پڑے گا, اور پھر اس حوالے سے پھر جو گلوبل لیگل فریم ورک ڈیولپ ہوگا اس کے تحت پھر تمام جو ممالک ہیں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اپنے ممالک میں بھی لیگل فریم ورک جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے. ڈومیسٹیکیشن جو ہے لاس کی وہ اسی طریقے سے ہو جیسے کہ ہیومن رائٹس لا کی ہوتی ہے اسی طریقے سے.
یہ گفتگو کر رہے تھے ہارون بلوچ.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
یہ پروگرام آپ کی خدمت میں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے, اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام جمعرات کے روز ریکارڈ کیا گیا. ہم اس پروگرام میں ماہرین سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے, اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں, اس کا لین دین کس طرح ہوتا ہے, اس کی حیثیت قانونی ہے یا نہیں ہے, اور اس کا مستقبل کیا ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں جناب امجد فاروق علوی, جو انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں. امجد فاروق صاحب, یہ فرمائیے کہ کرپٹو کرنسی کے بارے میں مختلف ماہرین کے مختلف خیالات ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے؟
کرپٹو کرنسی عام زبان میں اگر ہم کہیں یا ایون اسپیشلائز لوگوں کی زبان میں بھی بولیں تو اس کے نام سے بڑی کلیئر ہے کہ یہ کرپٹولوجی پہ بیس کرتی ہے کہ آپ ایک نمبر ایسا جنریٹ کرتے ہیں, جیسے ایک نوٹ کا نمبر ہوتا ہے, ایک نمبر ایسا جنریٹ کیا جاتا ہے جو کہ بہت یونیک ہوتا ہے, اور وہ ایک اس کے اندر اس کی انفارمیشن جو ہے وہ ایک بڑی سیکیورٹی لیئر میں ڈال دی جاتی ہے, سمپل ورڈ میں کہہ رہا ہوں. اور دوسرا پارٹ اس کا ہے ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتی ہے, یہ کسی ایک سینٹرل سسٹم کے اندر یہ انفارمیشن سٹور نہیں ہوتی, یہ ایک بڑا نیٹورک ہوتا ہے جس کو ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, اور وہ اس کے بٹس اینڈ پیسز کو سب جگہ پھیلا دیتے ہیں. ہر جگہ بھی موجود ہوتی ہے اور ہر جگہ وہ موجود ہے, ہر سسٹم میں بھی موجود ہوتی ہے, ہر نوڈ میں بھی موجود ہوتی ہے, مگر ہر نوڈ پہ وہ اویلیبل کی بھی نہیں جا سکتی. تو اس میں ایک سیکیورٹی کا عمل ہے اور دوسرا اس کی سیکریسی کا, پرائیویسی کا عمل ہے. تو یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली इसके बड़े एक्सपेरिमेंट है. बिटकॉइन इज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट विच इज नॉट अ रियलिटी. इट माई अ रियल करेंसी. एक करेंसी को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट और एक लेजिटिमेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बैकिंग होती है जो कि बिटकॉइन को बिल्कुल भी नहीं है, ना हो सकती है. वो किसी गवर्नमेंट की इशू की गई नहीं हुई है. तो वो एक टोकन है जिसकी एक डिजिटल वैल्यू है. उसको प्रोड्यूस करने की, उसको क्रिएट करने की डिजिटल वैल्यू है. और उसकी कामयाबी जो है वो उसकी वैल्यू को डिटरमिन करती है. जैसे सोना है वो कामयाब है इसलिए लिमिटेड है, उसकी एक वैल्यू डिटरमिन होगी क्योंकि एक वैल्यूएबल चीज है. क्योंकि इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो सकती है, इसको प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है. तो बिटकॉइन की भी वैल्यू इसलिए इक्वेशन में डाल के उसको कह दिया गया कि उसको प्रोड्यूस करना था. उस स्ट्रिंग को, उसको मैकेनिज्म को, उसको पैदा करना काफी मुश्किल है. कंप्यूटिंग बहुत सारे रिसोर्सेज यूज होते हैं, तो उसकी एक वैल्यू डिटरमिन कर दी गई कि ये इतनी वैल्यू का है. और क्योंकि वो एक लिमिटेड वैल्यू की वॉल्यूम में अवेलेबल है, तो उसकी डिमांड जैसे बढ़ती है तो उसकी वैल्यू ऊपर चली जाती है. अदरवाइज इट इज नॉट अ करेंसी एट ऑल बिकॉज इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी गवर्नमेंट और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सो बेसिकली इट इज एन एक्सीलेंट पीस ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एडॉप्ट कर सकती है और एक नई डिजिटल करेंसी के नाम से उसको लॉन्च किया जा सकता है. ये एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है.
आपने कहा कि किसी गवर्नमेंट की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बैकिंग नहीं हासिल, और करेंसी उसी वक्त तो स्टेबल होती है जबकि उसे किसी गवर्नमेंट की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बैकिंग हासिल हो. इस करेंसी को क्यों नहीं है?
क्योंकि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट है और इसको कोई ओन नहीं कर सकता. इसकी जो फिलॉसफी है कि नोबडी विल बी द ओनर ऑफ दिस करेंसी. साइबर स्पेस में वो नंबर है जो फ्लोट कर रहा है, जो एक लिमिटेड नंबर हमने सिस्टम से जनरेट की हुई है. तो इसको जब कोई ओन नहीं कर सकता, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ओन नहीं कर सकता, तो इसको बैक भी नहीं कर सकता. इसके जो कुछ अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं.
बिजनेसेस में जो सौदे होते हैं वो आमतौर पर कैश पर नहीं होते हैं, बैंक ट्रांजैक्शंस पर होते हैं और दूसरे तरीके होते हैं. तो क्या जो वर्ल्ड बिजनेसेस हैं वो भी इसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है?
इसको मेरे व्यू में, दिस इज जस्ट प्योर माय ओन प्रेडिक्शन, गवर्नमेंट्स हैं और मुख्तलिफ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खसूसी तौर पर जो आपके मॉनिटरी अथॉरिटीज हैं, वो मेरा ख्याल है इसको बहुत स्ट्रांगली कंसीडर कर रही है टू क्रिएट एंड बैक डिजिटल करेंसी. और इट इज अबाउट टाइम. मेरे ख्याल में अब वो वक्त, दुनिया उस महल पर पहुंच चुकी है कि जल्द ही इसकी ये डिजिटल करेंसी का की रियलिटी जो है वो दुनिया में नजर आने लगेगी. मिसाल के तौर पर चाइना गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी है डिजिटल करेंसी एक ट्रायल के लिए. वो अपने कुछ फेडरल एम्प्लॉयज को डिजिटल करेंसी में पेमेंट करते हैं. तो मैं जहां तक भी देख रहा हूँ कि ये हो सकता है कि जो हमारा जो फेडरल रिजर्व है उसको कोई ना कोई कोई बड़ी बड़ी कंट्री, कोई बड़ी फाइनेंशियल पावर जो है और कोई बिजनेस पावर चाइना या रशिया या कोई कंसोर्शियम जो है वो यकीनन उनको चैलेंज करे By creating a digital currency and और उसको आम use में और reality में उस section में अगर आ जाए, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है आने वाला है ये दौर, बड़े बहुत जल्द ये दौर expect कर रहा हूँ मैं actually ये current ही रहा particularly जब दुनिया की economy एक stand still से गुजर रही है इस वक्त. तो ये best time है कि एक्सरसाइज को कोई करने की कोशिश करे, जब पर्टिकुलरली फिजिकल कॉन्टैक्ट और लोगों का फिजिकल मूवमेंट लोगों की बहुत बार हुई हुई है. मैं पिछले साल एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कोई ना कोई डिजिटल करेंसी का एक्सपेरिमेंट जो है ना कोई रियल एंटिटी कोई गवर्नमेंट जरूर दुनिया में लेके आएगी, मुतारफ करेगी. और मेरे ख्याल में चाइना इसमें कोशिश कर रहा है.
अगर ये एक डिजिटल करेंसी ऑफिशियल लेवल पर इंट्रोड्यूस होती है तो जो बकिया करेंसीज हैं दुनिया में, क्या उनका फ्यूचर सेफ होगा?
डिजिटल करेंसी उसको रिप्लेस करेगी, मेरे 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 ख्याल से उसको रिप्लेस करना चाहिए। वक्त हम वहां पर पहुंच चुके हैं कि इस चीज को प्लानिंग में लाना चाहिए। बल्कि हमने एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक रिकमेंडेशन लेटर भेजा है कि हमने इसको, इस स्टडी को पाकिस्तान को अपने लेवल पर जरूर स्टार्ट करना चाहिए। इससे पहले कि कुछ और एंटिटी इस एरिया में एंटर हो, मेरे ख्याल में फेडरल रिजर्व को, फेडरल जो जो आपका सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक उनको जितना उनकी स्टडी कंप्लीट होगी, जितना उनके पास सारे इंफॉर्मेशन होगी, आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम देम कि वो इसके ऊपर काफी काम कर चुके होंगे और जब वो वक्त सही होगा तो वो यकीन स्टेबल करेंगे। तो मेरा ख्याल है उनको करना चाहिए। फिजिकल करेंसी की जगह डिजिटल करेंसी ही ट्रांजेक्ट की जाए और मेरे ख्याल में उसके लिए वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, क्योंकि मैं टेलीकॉम से बिलोंग करता हूँ और मेरी बड़ी गहरी नजर है इसके ऊपर। इस स्पीड से इसको इंटरनेट को और कम्युनिकेशन को, डिजिटल कम्युनिकेशन को दुनिया के उन एरिया के लिए में फैलाने की कोशिश की जा रही है या अवेलेबल करने की कोशिश की जा रही है। सैटेलाइट ये जो भी एलन मस्क का जो प्रोजेक्ट है वो भी मेरे ख्याल में वो भी एक अच्छा कंपोनेंट होगा इसका, या एक अच्छा एलिमेंट होगा इसका फ्यूचर में डिजिटल करेंसी आती है। तो ये सब चीजें जो है ना, सारे उसके इंग्रीडियंट्स जो है ना, वो बड़ी तेजी से मैच्योर हो रहे हैं। इस वक्त मुझे नजर आता है कि ये कंप्लीट नहीं करेगी, करना भी नहीं चाहिए इसको। डिजिटल करेंसी को पेपर करेंसी के साथ कंप्लीट नहीं करना चाहिए, इसको रिप्लेस भी करना चाहिए, क्योंकि इससे इससे जो बैंकिंग सिस्टम में बहुत बड़ा फ्लॉ है। जो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम जो है, वो उनके पास उतनी अमाउंट नहीं होती जितना वो कैश यूज कर रहे होते हैं, उसका फ्रैक्शनल मार्जिन होता है उनके पास, और वो सारा बेनिफिट बैंक ले रहा होता है और जो आम इंसान है वो उसका उसका बेनिफिट उससे उससे वो बहुत दूर होता है। डिजिटल करेंसी के यूज करने से जो सबसे बड़ा जो बैंकिंग फ्लॉ है कि वो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग वाला जो सिस्टम है, सबसे ज्यादा चैलेंज उसको होगा, क्योंकि जब इसको ट्रांजेक्ट किया जाएगा, डिजिटल नोट को ट्रांजेक्ट किया जाएगा, तो उस तक मौजूद होना जरूरी होगा। वेयर एज जब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करते हैं, उस वक्त आपको उस करेंसी के नोट का होना, मौजूद होना जरूरी नहीं है जब वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जा सकते हैं। जब इस सूरत में वो डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगी, इसकी अफाकियत आम इंसान के लिए ज्यादा बेहतर होगी एज कम्पेयर टू पेपर करेंसी।
बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो करेंसी का फिजिकल फेस है?
नहीं, फिजिकल फेस नहीं है। डिजिटल करेंसी,
इसकी कानूनी सूरत हाल क्या है? जो लोग इसको खरीदते हैं या बेचते हैं, क्या वो कोई गैर कानूनी काम करते हैं या कानून की हदूद में रहते हैं?
किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल हो सकता है इस वक्त, इसको क्योंकि इसको इसको मॉनिटर नहीं किया जा सकता, तो इसको इसका गलत इस्तेमाल काफी आसान है। ज्यादा वैसे और करेंसीज हैं जो बिटकॉइन के अलावा भी हैं जो गलत इस्तेमाल के लिए, जो ब्लैक मनी की ट्रांजेक्शन के लिए यूज हो रही है, तो पैसा में जी कैश के नाम से रहता है और इस तरह के और भी काफी हैं। तो इस वक्त तो जब तक के गवर्नमेंट से बैक ना हो, क्योंकि करंट वर्ल्ड रिजीम सेटअप जो है उसके हिसाब से तो गैर कानूनी है।
क्या इस बात के इम्कानात हैं कि जैसा आपने अभी भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, दहशतगर्दों के लिए या इसी किस्म के दूसरे गैर कानूनी कामों के लिए इसको बआसानी इस्तेमाल किया जा सकता है?
बिल्कुल किया नहीं जा सकता, जो हो रहा है, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी इसमें छुपा सकते हैं
और उसके लिए कोई कानून नहीं है।
उसके लिए कोई कानून नहीं है क्योंकि ये इसका इश्यूअर जो कोई नहीं है। तो जैसे आप बाजार में वो इस बात के ऊपर लिखते सारी डीलिंग होती है कि वो मैंने आपको इतने पैसे देने हैं, आपने इतने देने हैं, और वो करेंसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो हमारी पुराने जमाने की जितनी मार्केट्स हैं उसमें अभी भी ये सिस्टम चलता है, और वो एक छोटे से नोट के ऊपर, हैंड रिटन नोट के ऊपर ही वो ट्रांजेक्शन होती है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको उसमें की तो जरूरत ही नहीं होती, बेसिकली वो बाटा भी कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट का कोई हाथ या अमल दखल या कंट्रोल नहीं होता, उसमें भी ऐसा ही है।
ये किस तरह से वर्क करता है, इसको खरीदना या बेचना ये किस तरह से होता है, क्या तरीका इख्तियार किया जाता है इसका?
दुनिया के उन हिस्सों में जहाँ पे इसके ममानियत है वहाँ तो जैसे एटीएम नहीं है, लंदन में एटीएम वगैरह है, आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, मगर जहाँ नहीं है वहाँ पे आपको इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होता है, इसकी एप्स हैं और इसके नोट बहुत सारे लोग एज एन इंडिविजुअल आई कैन स्टार्ट अ नोड हियर आई हैव और मैं इसकी ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट कर सकता हूँ या इसकी ट्रांजेक्शन का वो बन सकता हूँ, ब्रोकर बन सकता हूँ अगर प्लेन में उसमें बात करूँ तो मैं मुझे एक सर्वे कंप्यूटर चाहिए और एक इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए और उसकी एक नोड के सॉफ्टवेयर है जो कि ओपनली अवेलेबल है, ओपन सोर्स है, उसको लोड करूँ और मैं आई कैन बिकम और उसके मैं फ्रंट एंड बनाऊँ चाहे उसकी एक मैं मोबाइल ऐप बना लूँ और मैं इसकी ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर सकता हूँ अभी चाहूँ तो विदाउट गेटिंग एनी लाइसेंस, विदाउट लिस्टिंग माई सेल्फ एनीवेयर और विदाउट किसी की परमिशन के आई कैन स्टार्ट ट्रांजेक्टिंग इट राइट नाउ। लेकिन जब मुझे बाय या सेल करना होगा तो जब उसको मुझे एक से दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करना होगा तो फिर मुझे किसी डिजिटल ग्राउंड पे जाना पड़ेगा।
एक बिटकॉइन जो है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसका क्या सबब है? अगर हम डॉलर अमाउंट को देखें
सोने की वैल्यू क्यों ज्यादा है? बिकॉज उसकी 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 प्रोडक्शन लिमिटेड है या उसकी रेयरिटी जो है उसकी तादाद दुनिया में कम है,
मकदार उसकी कम है जी,
डिमांड जब आप आएगी उसकी वैल्यू पर चली जाएगी। ये जो जो नंबर जनरेट होते हैं ये कम नंबर है, उसकी लिमिटेड है, मुसलसल उसकी माइनिंग की जाती है, मुसलसल बनाए जाते हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ज्यादा नंबर पत्थर क्रिएट करने उतना दुश्वार होता जाएगा। तो जब इन लोगों ने ये डिस्कवर कर लिया तो उन्होंने कहा उसकी वैल्यू ऊपर ही जाएंगे, वो बाकी ऐसे ही बिटकॉइन के नए नंबर को जनरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू जब शुरू में हमने स्टार्ट किया। ये कहना चाहूंगा कि कुछ इसके अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, तो मैं फोसी करता हूँ कि इसको एटलीस्ट अगर मैं बीइंग पाकिस्तानी मैं तो पाकिस्तानी ग्राउंड पे जरूर ये कहूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जरूर और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को स्टडी करना चाहिए कि अगर हम अपनी डिजिटल करेंसी बनाएं और अगर कभी वर्ल्ड वाइड डिजिटल करेंसी स्टार्ट होती है तो हमें उसके लिए पहले होमवर्क ये रखना चाहिए। एक तो मैं ये बात कहूंगा और दूसरा मैं कहूंगा कि अगर अमेरिकन फेडरल रिजर्व है या सेंट्रल बैंक है उनको जरूर कंसिडर करना चाहिए और अगर वो कंसिडर करते हैं तो पेपर करेंसी को रिप्लेस करने का तो उस पर बैंकिंग पे जो अटैक आना है उसके लिए बैंकों को भी प्रिपेयर होना चाहिए। और जहां तक बिटकॉइन का पर्टिकुलरली मान रहा है मेरे ख्याल में बिटकॉइन में मैंने एक अभी इन्वेस्टमेंट नहीं की और ना करूंगा क्योंकि इट इज स्टिल अनओन्ड अनबैक्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है।
ये गुफ्तगू कर रहे थे अमजद फारूक अलवी। اور سمعین قبل اس کے آپ سے اجازت طلب کی جائے ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے نشر ہونے والے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے نشریے کا وقت تبدیل ہو رہا ہے۔ پیر 15 مارچ سے شروع ہونے والے ہفتے سے یہ پروگرام پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7:30 بجے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پیش کیا جائے گا۔ خبروں اور حالات حاضرہ کا پروگرام حسب معمول شام 7 بجے نشر کیا جائے گا۔ اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی